सौपामंत्रितो राज्ञा पितुराज्ञा
तथायामिति सत्पते
माताजी
स उपामन्त्रितो राज्ञा कथायामिति सत्पते ब्रह्मरातो वृषं पीतो विष्णुरातेन संसिद्धि
शब्दार्थ सूत उवाच। श्रील सूत गोस्वामी ने कहा सह वह शुकदेव गोस्वामी उपामंत्रितः इस प्रकार पूछे जाने पर राज्ञा राजा द्वारा कथायाम कथाओं में इति इस प्रकार सत्पते सर्वोच्च सत्य की ब्रह्मराता शुकदेव गोस्वामी वृषाम अत्यधिक प्रीतः प्रसन्न विष्णुरातेन महाराज परीक्षित द्वारा संसदि सभा में। अनुवाद और तात्पर्य हिज डिवाइन ग्रेस हिस्सी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद के। तो अनुवाद इस प्रकार से है, सूत गोस्वामी ने कहा महाराज परीक्षित द्वारा भक्तों से संबंधित भगवान श्री कृष्ण की कथाएं कहने के लिए आमंत्रित किए जाने पर शुकदेव गोस्वामी अत्यधिक प्रसन्न हुए। तात्पर्य, नियमानुसार श्रीमद् भागवत की चर्चा केवल भगवत भक्तों के बीच ही की जा सकती है। जिस प्रकार भगवत गीता की आधिकारिक व्याख्या श्री कृष्ण तथा अर्जुन के बीच हुई, उसी प्रकार श्रीमद् भागवत जो भगवत गीता का स्नातकोत्तर अध्ययन है की व्याख्या शुकदेव गोस्वामी तथा महाराज परीक्षित जैसे विद्वानों तथा भक्तों के बीच हो सकती है, अन्यथा अमृत का वास्तविक स्वाद नहीं चखा जा सकता। शुकदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित से प्रसन्न थे क्योंकि वे भगवान की कथाएं सुनने से तनिक भी नहीं उबे थे, अपितु वे उन्हें रुचिपूर्वक अधिक अधिक सुनना चाह रहे थे। मूर्ख व्याख्याकार वृथाई भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवत में अपना हाथ लगाते हैं जबकि इन विषयों पर उनकी पैंट नहीं है। अभक्तों को इन दोनों सर्वश्रेष्ठ वैदिक ग्रंथों में धकल देने से कोई लाभ नहीं मिलेगा, अतः शंकराचार्य ने श्रीमद् भागवत का भाष्य करने में हाथ नहीं लगाया। श्रीपाद शंकराचार्य ने अपनी भगवद गीता के भाष्य में श्री कृष्ण को श्री भगवान के रूप में स्वीकार किया है किंतु बाद में उन्होंने निर्विशेष वाली दृष्टि से टीका की है किंतु अपनी स्थिति से अवगत होते हुए उन्होंने श्रीमद् भागवत की टीका नहीं की। श्री शुकदेव गोस्वामी को श्री कृष्ण का प्रश्रय प्राप्त था इसलिए उन्हें ब्रह्मराज कहा गया है। श्रीमान परीक्षित महाराज को विष्णुराज कहा जाता है क्योंकि उन्हें भगवान विष्णु का संरक्षण प्राप्त था। भगवत भक्त के रूप में वे भगवान द्वारा सदैव सुरक्षित रहते हैं। इस संबंध में ये भी स्पष्ट है कि विष्णुराज को और किसी से न सुनकर ब्रह्मराज से ही श्रीमद् भागवत सुननी चाहिए क्योंकि अन्य लोग दिव्य ज्ञान को ठीक से प्रस्तुत नहीं करते और इस तरह मूल्यवान समय को नष्ट करते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये।
पांचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सुत उवाच स उपामंत्रितो राज्ञा कथाया इति सत्पते ब्रह्मरातो वृषम प्रीतो विष्णुरातेन संसदि। सूत गोस्वामी ने कहा महाराज परीक्षित द्वारा भक्तों से संबंधित भगवान श्री कृष्ण की कथाएं कहने के लिए आमंत्रित किए जाने पर शुकदेव गोस्वामी अत्यधिक प्रसन्न हुए। तो कल आपने सुना है श्रीमद् भागवतम का वर्णन हो रहा था हिज ग्रेस पद्मपुरी प्रभु के द्वारा, उन्होंने श्रवणम पर जोर दिया था और बहुत सारे जो एग्जाम्पल्स है उदाहरण है उन्होंने प्रस्तुत किए थे। और पिछले श्लोक में परीक्षित महाराज बोल रहे हैं, परीक्षित महाराज अपनी इच्छा को व्यक्त कर रहे हैं और वो बता रहे हैं कि हे शुकदेव गोस्वामी, आपको लगता होगा कि लगभग अभी मैंने ये जब से मैं बैठा हूँ श्रीमद् भागवतम को सुनने के लिए आपके चरण कमलों में, और मैंने शुरुआत के दिन से ही उपवास करना शुरू किया है, बल्कि ये जो कथा है श्रीमद् भागवतम की ऐसे नहीं कि एक घंटे की थी या दो घंटे की कथाएं चल रही थी, उसके बाद जो श्रोतागण है बीच बीच में जाते थे रिफ्रेशमेंट पीने के लिए खाने के लिए, नहीं वो दिन रात सात दिन और सात रात। आजकल हम भागवत सप्ताह करते हैं वो दिन में कुछ घंटे का होता है और उसमें भी गाना बजाना और बहुत सारी चीजें होती हैं, मनोरंजन होता है, भगवत रंजन नहीं। तो ऐसी जो कथा शुकदेव गोस्वामी के द्वारा परीक्षित महाराज नहीं सुन रहे थे, परीक्षित महाराज सुन रहे थे भगवान का जो शुद्ध चरित्र है जिसका वर्णन शुकदेव गोस्वामी के मुख से हो रहा था। और उसको सुनते सुनते वो कहते हैं परायांति, वो कहते न मैं आसवः कि मेरे अभी प्राण इतने जल्दी नहीं जाएंगे, निकले नहीं जाएंगे, बल्कि मैंने उपवास किया है। कई बार जो वक्ता है वो सोचता है कि अरे श्रोताओं को देखता है, वो सोचता है कि अभी इनको गर्मी लग रही है, इनको ठंडी लग रही है, ये भूखे प्यासे तो नहीं है। लेकिन यहाँ जो श्रोता है, क्योंकि श्रोता का उत्साह देखकर वक्ता के जीवा पर सरस्वती आकर निवास करती है और कृष्ण की महिमा अनलिमिटेड अनंत रूपों में वो वर्णन करना शुरू करती है। तो उसके लिए क्या चाहिए? उत्साह। किसका उत्साह? श्रोताओं का। तो वैसे ही परीक्षित महाराज अपनी जो उत्सुकता है सुनने की, जो लालसा है, उसको प्रकट कर रहे हैं शुकदेव गोस्वामी के पास। और वास्तव में जिस प्रकार से एक डॉक्टर है और एक पेशेंट है, पेशेंट जाके डॉक्टर के पास बताता है कि हाँ मुझे ये हो रहा है, मुझे वो हो रहा है, फिर डॉक्टर का भी उत्साह बढ़ता है उसको ट्रीटमेंट देने के लिए, प्रिस्क्रिप्शन लिखने के लिए। तो वैसे ही ये जो परीक्षित महाराज एक पेशेंट है और उनको अभी मृत्यु उनके नजदीक है, सामने मृत्यु खड़ी है, सातवें दिन में उनका मृत्यु होने वाला है। तो ऐसे परीक्षित महाराज सुनने के लिए बहुत लालायित हो गए हैं, बहुत उत्सुक है और बहुत सिंसियर है उनसे सुनने के लिए शुकदेव गोस्वामी से। वो कह रहे हैं कि आपकी जो कथा आप जो वर्णन कर रहे हो, आपकी वाणी वास्तव में समुद्र की तरह अनलिमिटेड है, भरी हुई है, और कितनी भी मात्रा में आप उसको गिरा सकते हो या दे सकते हो कृष्ण कथा रूपी जो अमृत है, और मैं क्या करूंगा उसको पीने के लिए तत्पर हूं। तो वास्तव में परीक्षित महाराज के पास वो योग्यता थी, वो क्वालिफिकेशन था। वो क्लास में आए थे खाली हाथ नहीं आए थे, क्या लेकर आए थे? क्योंकि ये कृष्ण कथा अमृत है, अमृत का मतलब है अमृत को लेने के लिए क्या होना चाहिए आपके पास? एक बर्तन होना चाहिए। अभी हम बिना बर्तन के आकर यहाँ बैठते हैं, और वो सोचते हैं कि कुछ जा ही नहीं रहा है, कुछ शुद्धि हो ही नहीं रही है, कितने भागवतम क्लासेस अटेंड की मैंने। हाँ, लेकिन हम अपना ये जो बर्तन है श्रीमद् भागवतम क्लास में लाने का, वो घर में रख के आ जाते हैं और क्लास में आकर बैठते हैं। वो बर्तन क्या है? हमारा हृदय है। और वो हृदय, वो जो बर्तन है, हाँ, गौर गोविंद महाराज कहते हैं कि वो चार चीजों से बना हुआ है। और वो चार चीजें क्या है? त्रिनादपि सुनिचे न तरोरिव सहिष्णुना अमानिना मानदेना कीर्तनीय सदा हरि। तो ये जो बर्तन है, त्रिनादपि सुनिचे न, विनम्रता का भाव, सुनिचे न, त्रिनादपि सुनिचे न तरोरिव सहिष्णुना, वृक्ष के समान सहनशीलता व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए। अमानिना मान देना, उससे पहले क्या है? कोई मान की अभिलाषा ना रखो कि लोग मेरा सम्मान करेंगे, मान करेंगे, आदर आदि करेंगे, मेरी वहां वहां प्रशंसा आदि करेंगे। इस भावना को पूर्ण रूपे ना अपने हृदय से त्याग देना चाहिए। और सदैव भक्तों को तत्पर होना चाहिए कि कैसे मैं हरेक भक्तों को आदर प्रदान करो, सम्मान प्रदान करो। जब इस प्रकार की भावना जिस व्यक्ति के हृदय में है या जिस व्यक्ति ने डेवलप की है, वो व्यक्ति वास्तव में भागवतम की कथा रूपी अमृत को अपने हृदय में रख सकता है। अन्यथा बाकी सारी चीजें क्या है? ये जो बर्तन हम लेके बैठे हैं क्लास में, उसको हजारों छेद हैं। और वो छेद क्या है? हाँ, नाना प्रकार के जो अनर्थ है, काम क्रोध लोभ मद मात्सर्य आदि, ये सारे असंख्य छेद हैं। उसमें भी मान सम्मान प्रतिष्ठा आदि की ये जो भावना है, हाँ, तो ये सारे बर्तन तो लेके आए हैं, लेकिन वो कैसा गलत बर्तन लेके आए हैं, उसमें इतने सारे छेद हैं। तो ऐसी भागवतम का कथा रूपी जो अमृत है या श्रीमद् भागवतम को हम अपने हृदय में धारण नहीं कर सकते। और वास्तव में एक साधक को श्रीमद् भागवतम को अपने हृदय में धारण करना होगा, क्योंकि श्रीमद् भागवतम को अपने हृदय में धारण करना मीन्स कृष्ण को अपने हृदय में धारण करना है, क्योंकि कृष्ण श्रीमद् भागवतम से अभिन्न है। कृष्णे सुधाम उपगते धर्म ज्ञाना दिवि सहा नष्ट कला नष्ट कलो दृशामेश पुरानो अर्क अधुनो उदित। कृष्ण द्वापर के अंत में ही जगत को छोड़कर चले गए, लेकिन वही परम भगवान कृष्ण कलियुगा में भी मौजूद है श्रीमद् भागवतम के रूप में। इसलिए वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कृष्ण तुल्य भागवत विभु सर्वाश्रय, कि ये जो श्रीमद् भागवतम है ये कृष्ण के समान है, समान नहीं बल्कि साक्षात कृष्ण है। तो उसको धारण करने के लिए हमें योग्य होना होगा। तो ऐसे परीक्षित महाराज थे। हाँ, तो परीक्षित महाराज के लिए भागवतम का अवतरण हुआ है, इसका मतलब परीक्षित महाराज के पास कितनी महत्वपूर्ण योग्यता होगी। एक्चुअली इस संसार में भी कोई वस्तु हमें प्राप्त करते हैं, हम प्राप्त करना चाहते हैं तो हम उसको कुछ पे करते हैं। कोई फ्री का माल आपको मिलता है क्या? कहां से? नहीं, हर चीज के लिए आपको पे करना होता है, कुछ ना कुछ मूल्य देना होता है। तो उसी प्रकार से श्रीमद् भागवतम को कैसे आप खरीद सकते हो? उसके लिए बहुत बड़ा मूल्य हमें क्या करना होगा? चुकता करना होगा। और वो मूल्य क्या है? कई प्रकार से आचार्यगण इसका वर्णन करते हैं, और हम साक्षात परीक्षित महाराज के जीवन से देखते हैं कि परीक्षित महाराज ने क्या मूल्य चुकाया है? अपना लाइफ दिया है श्रीमद् भागवतम को। क्या दिया है? अपना लाइफ देने के बाद उनको श्रीमद् भागवतम प्रकट हुआ है। शुकदेव गोस्वामी जो तैयार हो गए हैं, क्या अभी मेरे मृत्यु सन्निकट है, मैं मरने वाला हूं। अभी हमारी स्थिति कैसी है? युधिष्ठिर महाराज कहते आहनी आहनी भूतानी गच्छन्ति यमालया शेष स्थावर निच्छन्ति किम आचार्य अतः परम। हम अपने आंखों से देखते कि मेरे पिता मर रहे हैं, मेरी माँ मर रही है, दादा परदादा रिश्तेदार, वो बॉर्डर में सैनिक मर रहे हैं, जहां तहां कितना बॉम्ब स्फोट हो रहा है, सुनामी आ रही है, अर्थक्वेक हो रहे हैं, लोग मरे ही जा रहे हैं। इसलिए ये मृत्यु संसार है, इसलिए इसको मृत्यु संसार कहा गया है। हर क्षण हर रोज हम मृत्यु को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, लेकिन एक चीज के भूल गए हैं, हम इस चीज को भूल गए हैं कि नेक्स्ट कौन है, मैं हूं, मेरी बारी अभी आने वाली है, मैं मरने वाला हूं, अगला मैं व्यक्ति हूं, और मरने से पहले मैं क्या तैयारी किया है कुछ, हाँ मृत्यु की मैंने तैयारी किया है, हमने मृत्यु की तैयारी नहीं की है, और हम सदैव भ्रम में बने रहते हैं। प्रभुपाद वर्णन करते हैं हाँ कि एक जो बकरी है हाँ उसको बांधा जाता है, बकरी को हाँ कसाई खाने के बाहर कसाई काटता है, तीन चार बकरियों को वहां बांध के रखता है और उनको हरी घास भी खिलाता है, साथ साथ एक बकरी को ऑलरेडी काट के वो लटकाता है, लोग आके वहां मांस खरीद के चले जाते हैं, और बाकी जो बकरियां हैं वो बिल्कुल मग्न हो गई हैं हरा हरा घास खाने में, और एक बकरी सोच रही है अरे मेरे साथ दूसरी बकरी है, मैं इसके साथ इंद्रिय तृप्ति में मग्न हो सकती हूँ या हो सकता हूँ, वो सपने देख रही है लेकिन भूल रही है कि अगला क्षण अगला हाँ जो छुरा है उस कसाई का मेरे गर्दन में चलने वाला है, मैं भी मरने वाली हूँ या मरने वाला हूँ, नेक्स्ट मैं हूँ। हाँ, तो इस प्रकार की स्थिति हम सबकी है और हम पूर्ण रूपेण भूल गए हैं, इसलिए श्रीमद् भागवतम का आश्रय लेना, श्रीमद् भागवतम को कस के पकड़ना एक साधक का लक्षण है, और परीक्षित महाराज कोई सर्वसामान्य राजा नहीं थे, परीक्षित महाराज कोई सर्वसामान्य श्रोता नहीं थे, परीक्षित महाराज ने श्रीमद् भागवतम के लिए कितना बड़ा त्याग किया है, हम श्रीमद् भागवतम सुनने के लिए क्या त्याग कर आते हैं, हाँ उसमें भी एक घंटा हम सुनते हैं, उसके लिए भी हम कितने सारा हमारा दिमाग में नाना प्रकार के विचार लगे रहते हैं, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे यहाँ जाना है, वो करना है, लेकिन व्यक्ति भूल जाता है कि परीक्षित महाराज के पास श्रीमद् भागवतम सुनने के लिए पढ़ने के लिए 7 दिन थे, लेकिन मेरे पास 7 सेकंड भी नहीं है, हाँ 7 घंटे भी नहीं है, कभी भी मैं मर सकता हूँ। मैं अभी मुंबई में था पिछले हफ्ते, तो वहां एक माता जी ने बहुत अच्छी सेवा करती थी वहां, तो वो उनको बुखार आ गया और वो डॉक्टर के पास गई, तो डॉक्टर ने कहा काफी सालों से वो प्रैक्टिस करती है, दीक्षित थी वो माता जी, तो डॉक्टर ने कहा कि बहुत दिनों से बुखार आ रहा था, तो उसने सोचा चलो क्रोसिन खा लेती हूँ या कुछ और कर लेती हूँ तो ये बुखार चला जाएगा, लेकिन जब वो गई डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने जब उसको देखा, चेक किया, डॉक्टर ने कहा तुम्हारे पास केवल 8 घंटे हैं जीवित रहने के लिए, पिछले हफ्ते की ये घटना है, 8 घंटे हैं। अब सोचो हमें कहा जाए कि आपके पास ठीक है, उसके पास तो 8 घंटे हैं, आपके पास आज का पूरा दिन है जीवित रहने के लिए, हम स्वयं अपने आप को परखे कि सबसे पहले मैं क्या करूंगी या सबसे पहले मैं क्या करूंगा, क्या करेंगे हम सबसे पहले, या पूरे दिन का शेड्यूल बनाएंगे, कल से मैं फिनिश, मेरा नामो निशान नहीं बचेगा, कल से मेरा मैं नहीं हूं इस संसार में, मेरे पास केवल आज का दिन है, आज के दिन मुझे मैं क्या 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 करूंगा आज के दिन। हम तो भगवत भक्ति के अलावा, भगवान की शरण ग्रहण करने के अलावा बाकी सारे कार्यों की लिस्ट बनाएंगे, है ना, उसको करने में लग जाएंगे, एक पागल व्यक्ति की बात ही। तो वो जो माता जी ने अपनी इच्छा व्यक्त की, उन्होंने उसने कहा कि मैं वृंदावन में शरीर त्यागना चाहती हूँ, मैं मरना चाहती हूँ, मृत्यु तो निश्चित है, मृत्यु से भयभीत कौन होता है जिसने भगवान के चरण कमलों की अहेतु की शरण ग्रहण नहीं की है। अभी भगवान के पास हम आते हैं तो कुछ बिजनेस करने के लिए आते हैं, कुछ डील करने के लिए आते हैं, कुछ प्राप्त करने के लिए आते हैं, हम वैसे भगवान के पास नहीं जाते, सेवा के लिए नहीं जाते। महाराष्ट्र में एक टेम्पल है लॉर्ड विठ्ठल का, भगवान विठ्ठल है वहां, तो वहां भगवान अल्टर में अकेले हैं, जैसे आप जगन्नाथपुरी जाओगे तो वहां जगन्नाथ है, बलदेव है, सुभद्रा है, आप द्वारका जाओगे तो द्वारका में भी अकेले द्वारकाधीश है। तो यहाँ महाराष्ट्र में जो भगवान विठ्ठल का मंदिर है पंढरपुर जो स्थान है, वहां भगवान अकेले हैं अपने मेन अल्टर में, लाखों लाखों लोग आते हैं उनका दर्शन करने के लिए, और जो रुक्मिणी देवी है, विठल मीन्स कृष्ण है, और उनकी जो भार्या है रुक्मिणी देवी और राधा रानी, उनके दो अलग साथ में अल्टर है, दूर है उनके हॉल से बाहर। तो वहां एक दिन रुक्मिणी कहती है कि हे हे कृष्णा, हे विठल, मैं कब से देख रही हूं इतने सारे लोग आपको दर्शन करने आ रहे हैं, लेकिन आप कभी उनको देख नहीं रहे हैं। तो कहते हैं वो मुझे देखने नहीं आए हैं, जो मुझे देखने आता है मैं जरूर उसको क्या करता हूं, देखता हूं, दृष्टिपात करता हूं। ये सारे लाखों की संख्या आए, लाखों की संख्या में आए हैं, वो मुझे देखने नहीं बल्कि मुझसे क्या प्राप्त करने की इच्छा, हाँ जो भौतिक भोग है। हाँ, सुंदर रूपवती भार्या, धनम देही, धन चाहिए, जन्म चाहिए, अच्छा पोजीशन चाहिए, डिग्रीज चाहिए, इसके लिए मेरे पास आ रहे हैं। तो ये मुझे देखने नहीं आए हैं, ये इनकी इनका 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 एटीट्यूड, इनकी जो मनोवृत्ति है ये बिल्कुल दुर्योधन की तरह है। हाँ, मेरे पास जो आते, जो मुझे देखने आते हैं, मैं उनको देखे बिना रहता नहीं, हमें उनको सर्व करने के लिए तत्पर हो जाता हूं। जिस प्रकार से द्वारका में कृष्ण ने कहा, रुक्मिणी तुम्हें याद है महाभारत के युद्ध से पहले मुझे दो लोग देखने के लिए आए थे, कौन आए थे, दुर्योधन भी मुझे देखने के लिए आया था और अर्जुन भी मुझे देखने के लिए आया था, लेकिन दुर्योधन आया था मुझे मेरे लिए नहीं, मेरी शक्ति के लिए। दुर्योधन ने कहा कि हम तो युद्ध करने जा रहे हैं, आप क्या कीजिए। भगवान ने कहा देखो आप युद्ध करने जा रहे हो, मैं तो कोई शस्त्रास्त्र उठाऊंगा नहीं, और मेरे पास दो चीजें हैं, एक तो मेरी नारायणी सेना और दूसरा मैं स्वयं। दुर्योधन को लगा कि इनसे कुछ लेना देना, ये शस्त्रास्त्र नहीं उठाएंगे, इनका क्या कार्य है, हमारे हमें क्या लाभ इनसे मिलने वाला है। अच्छा है कि इनकी जो बलशाली अपराजित होने वाली जो नारायणी सेना है उसको स्वीकारता हूं। तो ऐसे दुर्योधन ने उनकी नारायणी सेना स्वीकारी, लेकिन अर्जुन ने क्या किया, हे कृष्णा आप चाहिए। इसलिए उद्धव को श्रीमद् भागवतम में कृष्ण कहते हैं कि जो ज्ञानी व्यक्ति है, असली ज्ञानी कौन है, एक तो गीता में उन्होंने कहा बहुनाम जन्म नामंते ज्ञानवान्मा प्रपद्यते, बहुत बहुत जन्मों के बाद व्यक्ति को यह ज्ञान होता है, क्या, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, कि वासुदेव ही परम मेरे जीवन के लक्ष्य है। हाँ, तो इस बात को जो जानता है वो महात्मा है और ये ज्ञानवान व्यक्ति है। उसी को आगे उद्धव गीता जो 11वें स्कंध में है श्रीमद् भागवतम के, वहां कहते हैं अहम एव ही इष्टम, जो ज्ञानी व्यक्ति ये अनुभव करता है, इस निष्कर्ष पर पहुंचता है। हाँ, जैसे माता यशोदा भी चरणी कर रही थी ना, मंथन करती है किस लिए, मक्खन लाने के लिए। तो ज्ञानी व्यक्ति भी शास्त्रों को पढ़ता रहता है, इधर उधर से चरणी करता है, अलग अलग ग्रंथों को पढ़ना, उनमें डूब जाना, ये क्या है, चरणी है। लेकिन इससे क्या निकलना चाहिए ऊपर, सॉफ्ट मक्खन। और मक्खन कौन है, कृष्ण, कृष्ण की जो भक्ति है और कृष्ण की सेवा की भावना ये हृदय में स्थापित हो जानी चाहिए, तभी वास्तव में क्या है, सारे शास्त्रों के अध्ययन का फल है या वैराग्य का फल है, ज्ञान का फल है, दान का फल है, इन सब का फल क्या है, श्रवणम आदि का फल है, सेवाओं का फल है, क्या, कि कृष्ण के प्रति अहेतु की अप्रतिहता शुद्ध प्रेम भक्ति विकसित हो जाना, कृष्ण के प्रति हृदय में तीव्र अनुराग की भावना विकसित हो जाना। तो वास्तव में शास्त्रों का निष्कर्ष यही है, सवे पुंसा परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे, अधोक्षज जो कृष्ण है उनके प्रति जो भगवत भक्ति है उसकी स्थापना। तो ऐसा श्रीमद् भागवतम का जब हम आश्रय लेंगे तब वास्तव में जो भगवत भक्ति है हमारे हृदय में स्थापित हो जाएगी। हाँ, नित्यं भागवत सेवया भगवतीर उत्तम श्लोके भक्तिर भवति नैष्ठिकी, दृढ़ निष्ठावान। प्रभुपाद को पूछा कैसे पता चले कि कोई व्यक्ति भक्ति में बड़ा गंभीर है, कोई व्यक्ति अपनी भक्ति में दृढ़ है, प्रभुपाद ने कहा जो बिफोर फोर चार बजे से पहले उठता है उससे समझ लेना कि ये भक्ति में दृढ़ है। सिंपल, कोई लंबा चौड़ा शास्त्रों से कोई श्लोकास डालकर कोई आंसर नहीं, प्रैक्टिकल। इस प्रकार से हम अनुभव कर सकते हैं कि क्या मैं भक्ति करने के लिए यहां आया हूं, क्या मैं भगवत भक्ति चाहता हूं, हाँ अपने आप को परिवर्तन करना चाहता हूं, हाँ तो ये अपने आप को हमें चेक करना चाहिए। इसलिए भगवत भक्ति करनी है तो हमें क्या करना होगा, आध्यात्मिक गुरु या भक्तों का मार्गदर्शन स्वीकार करना होगा। जैसे परीक्षित महाराज शुकदेव गोस्वामी के चरणों में गिर रहे हैं और वहां उनको निवेदन कर रहे हैं, गायतः विष्णु गाथा, अब क्या करो कृष्ण का गुणगान करो, मैं रेडी हूं सुनने के लिए। हाँ, वहां गुरुजन प्रवचन दे रहे हैं लेकिन हम क्या है बहाने ढूंढ रहे हैं उसको न सुनने का, न सेवा करने का। तो वास्तव में हर जीव के हृदय में एक भाव है, कौन सा भाव है, भोग भाव। कौन सा भाव है, हाँ हमें लगता है कि मैं भाव का धरातल में आ गया हूं, हाँ थोड़ा सा भजन कर लिया, कुछ थोड़ी सी सेवा ना कर ली, भक्तों से थोड़ा सा संबंध स्थापित नहीं किया, हाँ सोलह माला जब शुरू नहीं किया, तो हमें लगता है कि अभी मुझे बाकी कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, अभी मैं कौन से धरातल पर हूं, भाव के धरातल पर हूं। लेकिन नहीं, वो भाव कौन सा है, उसके आगे एक लगा हुआ है भोग भाव। और जब तक गुरु का मार्गदर्शन नहीं लेंगे, भक्तों के मार्गदर्शन में उनके अनुगत होकर भक्ति की साधना की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक उसमें परिवर्तन नहीं आता। गुरु का एक ही कार्य है, हाँ भोग भाव को केवल सेवा भाव में कन्वर्ट करना। जो एक्सपर्ट है डिसाइपल के भोग भावना को सर्विस भावना में कन्वर्ट करने में, चेंज करने में, परिवर्तित करने में, वो वास्तव में गुरु है। वो वास्तव में कौन है, आध्यात्मिक गुरु है। हाँ, ये उनका मेन बिजनेस है। गुरु का ये बिजनेस नहीं है कि आपके लिए लड़के ढूंढो, हाँ, आपकी शादी नहीं हो रही है, या आपके लिए लड़का ढूंढो, या फिर आपका बिजनेस नहीं चल रहा है तो आपके लिए कुछ मंत्र उच्चारण करो आदि, ये सब कार्य नहीं है। गुरु का एकमेव कार्य है कि शिष्य के हृदय में कृष्ण के प्रति जो प्रेम है उसको उजागर करना। और इसलिए गुरु क्या करता है, नाना प्रकार के विधि विधान और ट्रिक्स को अपनाता है जिसके द्वारा शिष्य को एंगेज करता है भगवत सेवा में, और जिससे शिष्य के हृदय में जो सुप्त कृष्ण चेतना है वो जागृत हो जाती है। इसलिए श्रीमद् भागवत में शब्द अवतार है, जैसे विग्रह को कहा जाता है अर्चा अवतार। अभी इनकी सेवा करना कितना कठिन है, अर्च विग्रह की सेवा करना कितना कठिन है, पुजारियों को पूछिए। अभी ठंड के दिन आ रहे हैं, सुबह आपको उठना है 3 बजे, स्नान आदि करके यहाँ आना है, पहले भगवान को उठाओ, आप उनके लिए भोगा तैयार करके लाओ, ऑफरिंग करो, बहुत सारी चीजें हैं। पूरे दिन अर्च विग्रह की सेवा, अर्च विग्रह की सेवा करना मीन्स एक छोटे से बच्चा जो जन्म लेता है उसकी सेवा करने के समान है। छोटा बच्चा बिल्कुल अपने माँ पर आश्रित हो जाता है, हाँ सब कुछ आपके शरणागत हो गया हो, हाँ तो फिर माँ को सब कुछ करना होता है, उसका उसको क्लीन करना, उसको स्नान करना, उसको खिलाना, उसके लिए कितने सारे कष्ट झेलने होते हैं। लेकिन वो सेवा में माँ कभी थकती है क्या, या बोर हो जाती है, परेशान हो जाती है, नहीं, वो ऐसे नहीं कहते भी इसको उठा के फेंक देते हो, बहुत हो गया। हाँ वो माँ का हृदय नहीं है, वो पुतना का हृदय है। लेकिन जब अर्च विग्रह, अर्च अवतार, ये भी अर्च अवतार है, इनकी सेवा करना बहुत टफ है, बहुत कठिन है। लेकिन इसलिए हमारे आचार्यों ने श्रीमद् भागवतम हमें प्रदान किया है। कृष्ण ने अपना दूसरा एक अवतार प्रकट किया है, क्या है, शब्द अवतार, वो है श्रीमद् भागवतम। और एक अवतार क्या है, नामे रूपे, नाम रूपे कृष्ण अवतार, कली काले नाम रूपे
कृष्ण अवतार।
कलयुग में भगवान नाम के रूप में भी अवतरित है। तो इस प्रकार से श्रीमद् भागवतम को सर्व कर सकते हैं, भागवतम की सेवा आप कर सकते हो। बहुत सरल है, क्या केवल अटेंटिवली श्रवण करना सीखो। और वो कैसे, कभी कभी नहीं, नित्यम भागवत सेवया, हर रोज श्रीमद् भागवतम को सुनो। ये नहीं कि आपको रोज यहां आकर सुनना है, चाहे आप घर में हो श्रीमद् भागवतम को पढ़ो। श्रीमद् भागवत को पढ़ना भी क्या है, सुनना है। ऑडियो लेक्चर सुनो, यहां जब आते हो तो यहां अटेंटिवली सुनो और प्रयास करो। इस सेवा की भावना से जब आप श्रीमद् भागवतम के सुनोगे तो जो भोग की भावना है वह सरलता से सेवा की भावना में परिवर्तित हो जाएगी। और इस चीज को हम जब तक नहीं करेंगे तब तक क्या होगा, बहुजन में करे यदि श्रवण कीर्तन तबुतना पाए कृष्णा पदे प्रेम धान। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं चैतन्य चरितामृत में, बहु जन्मे करे यदि श्रवण कीर्तन, हो जन्म तक आप इस प्रकार का श्रवण कीर्तन करते रहो, दिन केवल आप बिताओगे गवाओगे, तबुतना पाए कृष्णा पदे प्रेम धान, फिर भी आप कृष्ण के चरण कमलों में रंच मात्र भी प्रेम का भावना को अब विकसित नहीं कर पाओगे। इसलिए श्रीमद् भागवत में टॉर्च है कलयुग में। हम सब देख रहे हैं फिर भी दिखाई नहीं दे रहा है। दिखाई दे रहा है हमें? हाँ, दिखाई देता तो हम फिर उचित व्यवहार करते, उचित आचरण करते और उचित कार्यों में अपने आप को निमग्न करते। अंधा अंधे व्यक्ति की तरह हमारा लाइफ है। अंधेर यथांधेर उपगीय मानहा, दूसरा अंधा जा रहा है गड्ढे में गिर रहा है, उसके पीछे उसकी पूंछ पकड़ के हम जा रहे हैं। हाँ, तो इसलिए हम अंधे हैं, मैं भी, हमारे पास आके हैं, दिख रहा होगा अभी, लेकिन अंधे क्यों है? प्रभुपाद ने कहा आप अंधे हो क्योंकि आपको यह पता नहीं है कि आप कौन हो। आप ये शरीर नहीं हो और आपको पता है बाकी लोग भी शरीर नहीं है, लेकिन आप अभी उसी धरातल पर कार्य कर रहे हो। शारीरिक धरातल, मैं और मेरा, बस ये दो शब्द बहुत स्ट्रांग है। इनकी गांठ जैसे दो रस्सियों को लेके गांठ मारते हो ना, नॉट मानते हो, तो हम सबको बांध दिया है। एक तो तीन गुणों ने बांध दिया है, उसकी गांठें तो और बढ़ती जाती हैं, लेकिन ये जो दो रस्सियां हैं ये इतनी पावरफुल है कि जीव को अनेकों अनेकों जन्मों तक बांध के रखती है। मैं और मेरे शरीर के जो बाय प्रोडक्ट है, जो शरीर से पैदा हो गए हैं या जिनको मैंने स्थापित किया है, एस्टेब्लिश किया है, वो सारी चीजें, मैं और मेरा, ये दो रस्सियां हमें क्या करती है, बांध देती हैं। और जिससे हम चाहते हुए भी अपने आप को अलग नहीं कर पाते। तो इसलिए हम वास्तव में अंधे हैं इस जगत में। मैं भी सूर्य हमें प्रकाश दे रहा है, लेकिन इसलिए श्रीमद् भागवतम रूपी ये जो सूर्य है, भागवतम की तुलना किससे की गई है, सूर्य से। कृष्णे सुधाम उपगते धर्म ज्ञानादिभिः सह, पुरानो अर्को अधुनो उदितः। पुरानो अर्क, अर्क मीन सूर्य, ये पुराण सूर्य के समान है, अधुनो उदित हो गया है। इसमें क्या है, सब कुछ है। तो ये श्रीमद् भागवतम को हमें गंभीरता से लेना चाहिए और इसका अध्ययन करना चाहिए, रोज अध्ययन करना चाहिए। तो जब हम समय को गवाएंगे नहीं और सदैव ये याद रखेंगे कि मैं अगला, अगला क्या कहेंगे, नेक्स्ट मैं हूं, मरने के लिए कौन हूं, मेरी बारी है, अभी अभी मेरी बारी है, अभी वो अभी प्रैक्टिकली दिखाई नहीं दे रहा है इसलिए हम अंधे हैं। हाँ, तो अभी मेरी बारी है। जैसे उस माता जी का मैं बता रहा था तो उन्होंने कहा कि मुझे वृंदावन में मरना है, उसी क्षण डॉक्टर के क्लिनिक से बाहर निकले, उसी क्षण उनके ब्रदर और चार पांच डिवोटीज, ऐसे आठ डिवोटी उनके साथ ट्रेन में बैठे मुंबई से, और मथुरा में जब प्रवेश किया ट्रेन में, तो उस ट्रेन में उन्होंने क्या किया, अपने शरीर को त्याग दिया, क्योंकि आठ घंटे से ज्यादा उनके पास टाइम नहीं था। वो माताजी तो तैयार थे, वो भयभीत नहीं थे, क्योंकि वो फिक्स थे कृष्ण भावना में। हाँ, मृत्यु निश्चित है, मृत्यु आने के लिए कुछ ना कुछ बहाना चाहिए, हार्ट अटैक, एक्सीडेंट, कुछ ना कुछ बहाना। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि आप कौन सी चेतना में हैं, आपकी क्या भावना है। हाँ, उस भावना का विकास करने के लिए है ये सब कार्यकलाप है, ये सब कार्य है। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशयः। अंत काल में जो मेरा स्मरण करता है, हाँ, वो मेरे पास वापस आता है। तो हम वास्तव में जाना चाहते हैं भगवान के पास, जाना चाहते हैं, तो हम इमरजेंसी को स्वीकार करते हैं। हम वास्तव में भगवान के पास वापस जाना नहीं चाहते। हम एक लिस्ट बनाए कि क्या क्या लक्षण है उस व्यक्ति के जो भगवान के धाम वापस जाना चाहता है। सबसे पहले आएगा कि तीव्रता, क्या है सबसे पहले, तीव्रता भक्ति में। इसलिए परीक्षित महाराज या शुकदेव गोस्वामी कहते हैं तीव्रेन भक्ति योगेन यजतः पुरुषापरम। सबसे पहली चीज भक्ति में तीव्रता, स्पीड। जैसे आप मरने वाले हो, हाँ, आप हॉस्पिटल नहीं पहुंचोगे, हाँ, तो आप मरोगे, हाँ, तो आप क्या करते हो, अब गाड़ी है आपके पास कि नहीं, एक घंटे में नहीं पहुंचूंगा तो मर जाऊंगा, तो तीव्रता से जाते हो कि नहीं, आप वो देखते नहीं हो कितना स्पीड है, केवल आप अपना जो पांव क्या कहते हैं एक्सेलेटर पर डालते हो, कुछ नहीं नजर आता। क्या नजर आता है, हॉस्पिटल के दरवाजे। उसी प्रकार से हमारा लक्ष्य होना चाहिए, हम वो दूरियादार भीम इनकी तरह है हमारी स्थिति। द्रोणाचार्य जब उनका परीक्षा ले रहे थे तो सबको खड़ा कर दिया लाइन में, सब लोग अपना हट्टा कट्टा प्रसाद पाके सब आए थे एग्जाम में, और वहां जब खड़े थे और एक पक्षी को टांग दिया था वहां एक हरे पेड़ के ऊपर, अलग अलग को बुलाया जा रहा था। द्रोणाचार्य ने कहा, ओ दुर्योधन आओ आओ, अब बताओ क्या दिखाई दे रहा है। गुरुदेव बड़े विनम्रता से, मुझे ना पूरा पेड़ भी दिखाई दे रहा है और उसके अंदर और बहुत सारी चीजें भी नजर आ रही, फल भी लगे हुए है। हाँ, तो दुर्योधन साइड हो जाओ, चलो भागो यहां से। भीम को बुलाया, भीम को क्या नजर आएगा, भीम को बुलाया तो भीम ने कहा, गुरुदेव मुझे तो पेड़ नजर आ रहा है, पेड़ के पीछे भी और कई सारी चीजें नजर आ रही है, पहाड़ नजर आ रहे हैं, तो रहने का भागो यहां से। तो इस प्रकार से हमारी स्थिति है, हमें भक्ति के अलावा बाकी चीजें नजर आ रही हैं, कृष्ण भावना के अलावा सब चार स्थानों में हम बिल्कुल मग्न हो गए हैं। ध्यानास्थित गतेन मनसहा पश्यन्ति हम योगिनहा, हम ध्यान लगाए बैठे हुए कृष्ण में नहीं। हाँ, कृष्ण के अलावा जितने भी वस्तुएं हैं, व्यक्ति हैं, स्थान है, सब्जेक्ट मैटर है, विषय है, उसमें हम एक चित्त हो गए हैं। तो जब अर्जुन को बुलाया तो अर्जुन ने कहा, मुझे केवल आग दिखाई दे रही है, उसको ये पता नहीं वो पक्षी की आग है या किसी और की आग है, मुझे क्या नजर आ रहा है, आग। इसी को कहते हैं एकेह कुरुनंदन या फिर व्यवसायात्मिका बुद्धि। हमारी बुद्धि तो बहुशाखा, मुझे अपने जीवन में बहुत कुछ करना है ना। हमें सबसे पहले क्या है, भक्ति, मुझे भगवत भक्ति का अपने हृदय में विकास करना है, कृष्ण के प्रति तीव्र प्रेम को जागृत करना है। उसके अलावा हमने सब कुछ करना है, लिस्ट में सब कुछ है। जैसे मैं परसों गुरु और डिसाइपल की स्टोरी बता रहा था, है ना, तो गुरुदेव ने लिस्ट में अपने आप को नहीं डाला था, बाकी सब चीजें लिस्ट में डाले थे, वो शिष्य ने बाकी सब चीजें उठाई। तो हम भी अपने जीवन में दिन रात सारी चीजें लिस्ट में डाल दी है, लेकिन सबसे पहले क्या डालना चाहिए, कृष्ण भावना भावित होना है मुझे, और वो इमरजेंसी कार्य है लाइफ का। हाँ, जैसे वेंटिलेशन, हम वेंटिलेशन पर रखते हो ना, कोई मर रहा है, ऑक्सीजन लगाते हो, तो इमरजेंसी इमरजेंसी सिचुएशन में। तो वैसे ही हमने अपने लिस्ट में सर्वप्रथम मुझे कृष्ण भावना भावित होना है, इसको हटा दिया और बाकी सारी लंबी चौड़ी लिस्ट बनाई है और वो लिस्ट कभी खत्म नहीं होने वाली। वो लिस्ट हमें क्या करेगी, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार ले जाएगी माँ के गर्भ में, फिर से मरो, फिर से जन्म लो, फिर से बूढ़ा हो जाओ, फिर से जाओ माँ से गर्भ में। ये किसने कहा है, ये क्यों इतने कष्टों को स्वीकारना है। तो उसी प्रकार से हमें अर्जुन के हम फॉलोअर बनना है। अर्जुन पक्के फॉलोअर थे, किसके, कृष्ण के। उन्होंने भी सुना, सुनकर क्या, गीता सुनकर उसका निष्कर्ष ये क्या था, गीता सुनने के बाद उसका रिजल्ट क्या था, करिष्ये वचनम तव, हे कृष्णा जो भी आपने कहा है, मैंने 45 मिनट का आपका क्लास सुना है, भागवतम का नहीं गीता का क्लास, जो भी आपने कहा है उससे मैं एग्री हूं और मैं अभी क्या करूंगा, करिष्ये वचनम तव, जो आपने कहा है उसके उसके अनुसार अपने आप को ढालूंगा, अपने आप को लगाऊंगा। हाँ, तो इस प्रकार से हमें भी तत्पर होना चाहिए कृष्ण भक्ति को स्वीकार करने के लिए और कृष्ण भावना में तीव्रता लाने के लिए। इसलिए कृष्ण भक्ति, कृष्ण भावना भावित होना यह हमारे लाइफ का पहला उद्देश्य, पहला कार्य है। हाँ, सुबह उठते ही इस बहुत इससे घृणा आनी चाहिए, या रात को सोने से पहले, अरे आज भी कृष्ण ने मुझे पूरा दिन दिया था कि आज भी मैं कृष्ण भावना भावित हो जाता, लेकिन आज भी मैं क्या रहा, फेल हो गया। हो कि नहीं, हम फेल होते कि नहीं, कल तक कितने दिन हमने गवाए। तो हम कृष्ण भावना भावित नहीं हुए, इतने सारे दिन हमने गवाए। तो हमें रोना चाहिए सोने से पहले, भगवान को प्रणाम करके प्रार्थना करनी चाहिए बेड पर, हे कृष्णा आप क्या करो, प्लीज कल का समय मुझे प्रदान करो, कल का दिन मुझे दे दो, और कल मैं क्या करूंगा, आपका भक्ति, आपका भजन, आपका नाम, आपकी सेवा गंभीरता से करूंगा। और इस तीव्रता को नहीं लेंगे ना तो हमारा जीवन चलती का नाम गाड़ी, बस वही कर रहे हैं हम एक प्रकार से। क्या थोड़ा सा लाइफस्टाइल चेंज कर दिया, कर्मी लोग पूरे माया में हैं, पूरे भौतिक वाले जीवन जी रहे हैं, उनको उनके जीवन का लक्ष्य पता नहीं है। और हम भक्ति में लगने के बाद भी क्या है, हाँ कर्मियों से थोड़ा सा बेटर है, क्यों, हमने क्या किया है, केवल अपने इसको चेंज किया है, लाइफस्टाइल को, क्लोथिंग, हेयर, हम बोलने का स्टाइल, प्रभु जी माता जी, सही कि नहीं, लैंग्वेज बदल दिया थोड़ा सा, स्टाइल कपड़ों का चेंज कर दिया, अप्रोच डांसिंग स्टाइल चेंज किया, सिंगिंग स्टाइल सब को चेंज किया है, हाँ लेकिन हृदय को चेंज नहीं किया। तो भक्ति विनोद ठाकुर एक गीत लिखते हैं, वो कहते हैं कि ऐसा भक्ति का दिखावा मत करो, भक्ति करो भक्ति का दिखावा मत करो। वो कहते हैं एवो तो एक कलेरा चेला को, यही है हमारी दशा, हम यहां आध्यात्मिक गुरु के डिसाइपल बनने नहीं आए हैं, या प्रभुपाद के शिष्य नहीं बन रहे हैं, या प्रभुपाद के अनुयायी नहीं बन रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, भक्ति करने का दिखावा कर रहे हैं और भूल गए हैं कि मुझे अपने जीवन में तीव्रता लानी है, तीव्रता से कृष्ण भावना भावित होना है। इसलिए रूप गोस्वामी ने कहा, कृष्ण भक्ति रस भाविता मति क्रियता मेरी कुतोपि लभ्यते तत्र लवल्यम मूल्यम एकलम जन्म कोटि सुकृतीर्ण लभ्यते। वो कहते हैं कृष्ण भक्ति रस भाविता, ये जो कृष्ण भक्ति है पूर्ण रूपेण रस से भरी है, रस भाविता मति क्रियते, और ये जो कृष्ण भक्ति आपको जन्म हजारों जन्मों की जो पायस एक्टिविटीज है सुकृति है उससे प्राप्त नहीं होने वाली। और यदि आपको पता चलता है कि कृष्ण भक्ति कहां मिल रही है उसको परचेज करने के लिए दौड़ो भागो, और जो भी पे करना पड़े आप क्या करो, पे करने के लिए तैयार हो जाओ। उसके लिए एक ही एक ही एक एक ही करेंसी काम करती है कृष्ण भक्ति को खरीदने के लिए, और वो क्या है, तत्र लवल्यम, हाँ तत्र लवल्यम अपि मूल्यम एकलम, एक ही मूल्य है, एक ही करेंसी है, क्या है, इगरनेस, हाँ सिंसियरिटी, हाँ जिसको कहते सिंसियरिटी या इगरनेस होना चाहिए, ये लवल्य, और ये ऐसे वैसे प्राप्त नहीं होता ना, करोड़ों जन्म बीत जाएंगे फिर भी इस प्रकार का लवल्य, इस प्रकार की तीव्रता, इस प्रकार का लालच भक्ति करने के लिए या तत्परता हमें नहीं प्राप्त होगी अपने आप से। वो कैसे प्राप्त होगी, जिन भक्तों के अंदर वो लवल्य है, इगरनेस है, हाँ उनके संग से क्या होगी, वो तीव्रता, वो लालसा हमारे अंदर जागृत होगी। जैसे प्रभुपाद अमेरिका गए पहली बार और वहां सारे हिप्पीज आदि थे और प्रभुपाद के अंदर कृष्ण सेवा की, कृष्ण भक्ति की इतनी लालसा है, लवल्य है, तीव्रता है, उनका संग करने मात्र से वहां के जो जो म्लेच्छ लोग हैं वो भी क्या बने, कृष्ण के लिए पागल हो उठे, मैड हो गए, कृष्ण भक्ति के लिए गंभीर हो गए। तो इसलिए भक्तिनाथ ठाकुर ने कहा कि हमें सोचना चाहिए कि मैंने बहुत दिन बिताए हे कृष्णा आपकी सेवा किए बिना, मैंने बहुत सारे जन्म बिताए हैं, दिन बिताए हैं और अभी मेरा मृत्यु नजदीक आ रहा है, हाँ मुझे क्या करो, सद्बुद्धि दो, अभी मुझे भगवत भक्ति को गंभीरता से करने दो। और वास्तव में जब तक हम भक्ति को गंभीरता से नहीं लेंगे, भक्ति को सीरियसली नहीं लेंगे, कृष्ण कभी भी हमें सीरियसली नहीं लेंगे, निश्चित है। हम चाहते ना कृष्ण हमें सीरियसली ले, जैसे कोई व्यक्ति आपको सीरियसली लेता है, हाँ उसका मतलब वो आपके प्रति क्या है, अटेंटिव है, आपके लिए तत्पर है, हाँ आपको सर्व करने के लिए तत्पर है, हेल्प करने के लिए तत्पर है, हर परिस्थिति में आपके लिए है, हाँ इसका मतलब है आप ना सीरियस हो उनके प्रति। तो वैसे ही हमें भक्ति के प्रति सीरियस होना है, क्योंकि भक्ति कृष्ण का हृदय है और कृष्ण अपना हृदय किसी को सरलता से नहीं देते। आप देते हो किसी को हृदय, हाँ हम बड़ा सोच समझ के देते हैं, है ना, किसी को हृदय देना भी है तो पूरा समय लगाते हैं, हाँ या तो हृदय को ऑपरेट करके किसी को दूसरे के इसमें डालना भी है तो उसके लिए तो बहुत ही सोचते हैं। तो उसी प्रकार से भक्ति क्या है, कृष्ण का हृदय है और कृष्ण अपना हृदय किसी को सरलता से नहीं देते, क्योंकि आप किसी को अपना हृदय देते हो तो उस व्यक्ति के लिए आप कुछ भी करने के लिए क्या होते हो, तैयार होते हो 24 घंटे और कितने दिन, 365, हाँ 24 घंटे 365 दिन के लिए, क्योंकि आप तत्पर हो, वैसे ही है कृष्ण नहीं देते। तो उसी प्रकार से आप भक्ति को सीरियसली लेते हो तो कृष्ण फिर हमें सीरियसली लेते हैं और अपना ये जो अमूल्य धन है वो हमारे हृदय में क्या करते हैं, ट्रांसफर करते, प्रदान करते हैं। और हम गंभीर नहीं है तो फिर भक्तिवृंद ठाकुर उस गीत को आगे कहते हैं, यही तो एक कली का चेला, कलियुग में वैसे ही बहुत सारे दिखावा करने वाले साधक गण हैं, हाँ भजन करने वाले साधक हैं, हाँ जैसे एक भक्त जप कर रहा था, हाँ चलो इधर चंडीगढ़ मंदिर में, तो हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए गए थे 2001 में, कुछ न्यू भक्तों की टीम लेकर चंडीगढ़ बटाला उधर आगे, हाँ आगे आगे ऐसे 15 दिन के लिए मैराथन में, उस समय पर मैराथन होती नहीं थी, दिल्ली मंदिर की 20,000 गीता हो जाती थी या 10,000 हाईएस्ट 20,000 गीता की। तो हम एक बस लेके गए, 5 न्यू भक्ता, एक ड्राइवर और गीता थी शायद 300 या 400 गीता लेकर, कहा पंजाब और चिल्ड्रन बुक, सारी स्मॉल बुक्स भरी हुई थी, बहुत सारे बुक्स थे। फिर वहां गए तो रहने के लिए कोई स्थान नहीं था और हम कुकिंग के लिए भी कुछ भी नहीं था हमारे पास, तो हम जस्ट ट्रैवल करते थे बस से, नदी में कहा आ गई नदी तो स्नान करते थे, कोई ऐसा टेम्पल आ गया तो उधर ही रह जाते थे और ऐसे एक, लेकिन तपस्या था और ठंड के दिन थे, वहां तो बहुत ठंड होता है लेकिन बहुत जॉयफुल था। तो हमने बुक्स खत्म हो गई हमारी सारी कृष्ण की कृपा से, फिर हम चंडीगढ़ टेम्पल आए तो वहां सोचा भी 2 दिन थोड़ा सा केवल जप करेंगे, पढ़ाई करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, प्रसाद में गए तो वहां बैठे सुबह जप करने के लिए, तो वहां सब भक्त जप कर रहे थे ध्यान से। तो एक जो डिवोटी है बारंबार अपनी जो बेड बैग है वो हिला रहा था और आवाज आ रहा था उसमें से। तो एक सीनियर डिवोटी जप करते हुए चलते हुए जा रहा था, उसने कहा क्या है इतना कैसे आवाज आ रहा है इसकी जप माला से, इसमें जैसे दिव्य ध्वनि निकल रही हो। तो उसने देखा, उसने कहा प्रभु जी बताओ दिखाओ दिखाओ आपकी माला। तो देखा जो मूंगफली होती है उसने अपने झोले में भरी हुई है। एक तो दाने निकाले होते हैं ना, और एक तो होता है उसके साथ छिलके के साथ, तो बजेगी ना वो छिलके एक दूसरे को लगते हैं। तो ऐसी सिचुएशन है कलेर चेला, यही तो एक कलेर चेला, ये एक है कलेर चेला। माथा नेड़ा, माथे को तो बिल्कुल ये कर दिया ना क्लीन हेड शेव, बिल्कुल चमक चमक रहा है। माथा नेड़ा कपनी परा तिलक नाके गलाये माला। तो मतलब हमने हमारा माथा क्लीन कर दिया, हेयर स्टाइल आदि बदल दी हमने, और कपनी परा जो साधुओं के कपड़े हैं उसी प्रकार के वस्त्र धारण करना शुरू कर दिए, धोती कुर्ता कोपिन आदि सब उसी प्रकार के वस्त्र आदि भी हमने स्वीकार कर लिए हैं। तिलक नाके, तिलक कहा नाक में, पूरा बड़ा दूर से ही नजर आना चाहिए, दर्शने पवित्र कर कि लोग मुझे देखेंगे कि मैंने इतना सुंदर तिलक लगाया है। तो ये भावना तिलक लगाता है तो सेवा की भावना से नहीं, कृष्ण के ये चरण कमल है तुलसी है और मुझे पवित्र होने के लिए मैं धारण कर रहा हूं ताकि मुझे कृष्ण का सदैव स्मरण रहे। अब इस भावना में है कि मुझे देखने मात्र से उसको कृष्ण का स्मरण होना चाहिए, क्योंकि मुझे तो ऑलरेडी मैं स्मरण की दशा से ऊपर हूं। इस भावना के कारण हम क्या करते हैं, तिलक धारण करते हैं, नाके तिलक गलाए माला, गले में माला। पहले तो थोड़ा सा हम शर्माते हैं, नए नए होते हैं ना, माला पूरा इसके अंदर ढक के डाले, कोई देखे ना मेरी माला, मेरा तिलक ना देखे। लेकिन जैसे 6 महीने बीत जाते हैं, एक साल, एक्चुअली जैसे दिन बीतते हैं वैसे हमें क्या होना चाहिए, हमारी मुद्रा सदैव ऐसे बढ़ती रहनी चाहिए। नमः भागवतम की शुरुआत वही है, परसों में कह रहा था ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मुद्रा का जब इस मुद्रा में परिवर्तन हो जाता है तो भगवत भक्ति कठिन होने लगती है। धीरे धीरे भगवत भक्ति में हम जब गंभीर नहीं होते और सरल नहीं, सरलता से भक्ति नहीं करते तो हमारे अंदर कपटता आदि आता है, दिखावा करने की भावना आती है, और हृदय मृदु या सॉफ्ट होने की बजाय ये हृदय कठोर होने लगता है पत्थर की तरह। फिर हमारी वाणी कठोर होने लगती है, भक्तों से डीलिंग करना सब फीलिंग की बन जाता है, दिखावा बन जाता है, और हम रफ टफ हो जाते हैं। जैसे भौतिक लोग यंगस्टर्स ना रफ टफ रहते हैं, वैसे क्लोथिंग होती है, वैसे ही बातें होती है, तो वैसे ही हमारे सिचुएशन होती है। तो हम गलाए माला, गले में माला धारण करते हैं, पहले तो बड़ा छोटा सा और अंदर, लेकिन धीरे धीरे हम थोड़े से कुछ दिन बिताते तो हम चौड़े होने लगते हैं। अभी तो मैं भी भक्त हूँ, हम भी तो भक्त हैं, अब क्या कह रहे हैं हम, तो फिर हम चौड़े होने लगते हैं और फिर मुश्किल होता है। चौड़ा हो जाओगे तो कृष्ण में, कृष्ण का जो प्लेस है वैकुंठ, वो स्पेसिफिक छोटा है गेट है ना, उसे घुसोगे नहीं आप, फिर अटक जाओगे बाहर। जो बिल्कुल सरल हृदय के हैं सीधे हैं वो अंदर घुसेंगे, बाकी चौड़े वाले वो बाहर ही खड़े रहेंगे मटेरियल वाले बहुत जगत में सड़ते रहेंगे। तो गलाए माला कंठी धारण करते धीरे धीरे बड़ा बड़ा कि दिखाई दे कि मैं कितना बड़ा भक्त हूं। तो इन चीजों से नापा नहीं जाता, ये सब बाहरी लक्षण है। वैसे देखा जाए इस गीत में भक्ति विनोद ठाकुर 3 प्रकार के सिद्धांतों का वर्णन करते हैं। एक है शाक्त फिलोसॉफी, एक है शैव फिलोसॉफी, और एक वैष्णव फिलोसॉफी। शाक्त जो शक्ति को स्वीकार करते हैं दुर्गा आदि, और जो शैव शिवजी आदि को, और वैष्णव जो विष्णु कृष्ण आदि को स्वीकार करते हैं। तो हमारा आचरण बिल्कुल इन 3 फिलोसॉफी के समान है। हमारे हृदय में शाक्त फिलॉसफी है। शाक्त फिलॉसफी क्या है? भोग की भावना। हृदय में मैं एक फिलॉसफी का पालन करता हूं, मेरी जैसे लोग कहते ना मेरी अपनी फिलॉसफी है ना, मैं तो बस अपने अनुसार चलता हूं, सारे जगत को नहीं देखता। तो ये फिलॉसफी कौन सी है? शाक्त फिलॉसफी। ये क्या है? भोग की भावना। हृदय में भोग की भावना। और शैव फिलॉसफी क्या है? बाहर दिखाना कि मैं कितना वैरागी हूं अपने चीजों से, अपने आचरण या फिर अपने वस्त्र आदि इन सब चीजों से दिखाना कि मैं कितना क्या हूं, विरक्त हूं, वैरागी हूं सारे जगत को। इसको कहते हैं इंटरनली शाक्त फिलॉसफी, एंजॉयमेंट की फिलॉसफी। और एक्सटर्नली क्या है? शैव फिलॉसफी, बाहरी रूप से। और पब्लिकली क्या है? वैष्णव फिलॉसफी। पब्लिकली, हाँ पब्लिकली तिलक, कंठी, बिड़ बैग और बहुत सारी चीजें। तो इस गीत की आखिरी लाइन में वही है, वो कहते माथा नेड़ा कपनी परा तिलक नाके गलाए माला देखते वैष्णवेर मात आसल शाक्त काजर भला। कहते दिखने में तो क्या लग रहा है, पक्का वैष्णव लग रहा है, पक्का भक्त, 100% शुद्ध भक्त है कि नहीं? बाहरी रूप से, अंदर से तो पूरा शाक्त है। और फिर आगे क्या है? सहज भजन कर छेन मामो। अभी भजन कैसे कर रहा है? तीव्रता से नहीं, गंभीरता से नहीं, सीरियसली नहीं, सिंसियरली नहीं, कैसे कर रहा है? हाँ सहज भजन, सहजिया की तरह, दिखावटी का, हाँ ढोंग भजन करने का ढोंग कर रहा है। हाँ संगे लय परेर बाला, अब यहां तक ही सीमित नहीं है। ये भजन करने वाला जो ये व्यक्ति है ये कौन है? कली का चेला है। दिखा रहा है कि मैं महान भक्त हूं, सारे वैष्णव के जो आभूषण आदि है उसने धारण किए हैं, और वो क्या कर रहा है? सहज भजन कर रहा है। और उसका परिणाम क्या? जब हम भजन गंभीर नहीं करते उसका परिणाम क्या है? संगे लय परेर बाला। हाँ परेर वाला, दूसरों की जो स्त्री है हाँ उनको संग लेकर घुमा रहा है। और वो ये क्या है? वो क्या सोच रहा है? सखी भावे भजचेन तारे। वो ये सोच रहा है कि ये कौन है? गोपी है ये सखी है। हम कहते ना सखी रानुगत कर, बोलते ना रोज सुबह सखी रानुगत कर सेवा अधिकार दिए करो निज दासी। तो सखी भावे बच्चन तारे नीचे हय नंदलाला। अपने आप को सोच रहा है मैं कौन हूं? कृष्ण हूं, नंदलाला हूं। तो भक्ति ठाकुर कहते अरे मूर्ख, वो कहते ओ भाई हाँ दूर कर, कहते इस भावना को क्या करो? दूर करो। हाँ दूर कर ये लीला खेला, आपकी ये जो लीला है इसको दूर करो। तो इस प्रकार से हम वास्तव में भगवत भक्ति गंभीरता से न करके हम सोच रहे हैं कि मैं बहुत चलाक हूं, नहीं मैं इतना एक्सपर्ट हूं कि बस डिवोटीज पागल है ये लोग, इनको क्या समझ में आता है मूर्ख कहीं के, ये बुद्धू है सारे डिवोटीज। हाँ मैं होशियार हूं, चलाक हूं, एक्सपर्ट हूं, है ना? तो वास्तव में हम दूसरों को धोखा नहीं दे रहे, हम सबसे अधिक किसको धोखा दे रहे हैं? खुद को। वो कथा आती है ना गधे की, पंचतंत्र में कथा में पढ़ रहा था तो उसमें आता है एक गधा ने सुवर नहीं सियार 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 जंगल से रात को एक गांव में जाता था रोज कुछ खाने के लिए वगैरह। और वो जब गया तो किसी घर में घुसा तो कलर के बड़े बड़े ड्रम्स पड़े थे, खुले थे। अभी अचानक घर के लोग उठ गए तो इस सियार भागने लगा, भाग के एक कलर के ड्रम में गिर गया, नीला कलर आ गया, पूरा कलर टोटली चेंज। और कलर के ड्रम से बाहर निकला और फिर अपने जंगल की ओर दौड़ा गया। तो सारे सुबह का समय हुआ था, और सूर्य उदित हो गया था, सब लोग देख रहे थे, सूर्य सारे जो प्राणी है, वन्य जो पशु है, उन्होंने देखा कि ये कोई अलग ही जानवर आया है। सब लोग डर गए, इवन सिम्हा भी डर गया जो जंगल का राजा है। और फिर इसने सोचा ये क्या है, सब लोग डर रहे हैं और सब प्रणाम कर रहे हैं, तो ये भी अपने आप को क्या, हाँ मैं राजा हूं, मैं किंग हूं, हाँ मैं बड़ा भक्त हूं। तो फिर ये गया, देखा कि सब लोग उनकी सेवा में लगे हुए हैं। अभी दिन का समय था ना, तो अपने असलियत, क्योंकि जो सिया उसकी असलियत शाम को पता चलती है। जैसे मायापुर जाओगे, क्या कहते सियार ना, सियार ही कहते ना, तो जा पूरा दिन में सब लोग उसकी सेवा कर रहे थे, सिम्हा आदि उसको किसी पशु को मार के उसके सामने प्रसाद, प्रसाद नहीं वो मांस आदि खिला रहे थे, कोई पानी लेके आ रहा था, कोई मदिरा लेके आ रहा था, कोई प्रणाम कर रहा था, कोई माला लेकर आ रहा था, सब सेवाएं हो रही थी। और इसका कलर अलग है, लेकिन मुंह खोलना खोला नहीं था उसने। अभी मूर्ख का पता तभी पता, मूर्ख तभी पता चलता है जब वो क्या करता है, मुंह खोलता है। प्रभुपद तात्पर्य में लिखते गीता के, तो वैसे ही है। शाम का समय हुआ, जब संध्या होती है तो जो सियार है दूसरे, वो भौंकने लगते ना, आवाज करते भू। आप मायापुर जाओगे तो मायापुर में शाम को आपके चलते हुए सियार चिल्लाते हैं, और पूरी रात। अब बंसी भवन है वहां, ये है बिल्डिंग है मायापुर मंदिर में, वो उसके पीछे आके भौंकते रहते हैं। तो वो जब सियार चिल्लाने लगे तो उसी समय इससे रहा नहीं गया, असलियत क्या हो गई, इसने भी आवाज अपनी तेज कर दी मुंह ऊपर करके, फिर सबको पता चला हाँ ये क्या है, इसने तो हमें धोखा दिया, ये वो राजा नहीं है। हाँ तो वैसे ही है, हम भी अपने आप को क्या कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं यदि हम भगवत भक्ति को स्वीकार करें। और हमें लगता है कि मैं बड़ा डिवोटी हो गया, भक्त हो गया, दस लोग मुझे प्रणाम क्या करते हैं या सम्मान क्या करते हैं, तो मैं अपने असलियत ही भूल गया। शिवेर स्वरूप है कृष्ण दास, मैं कितना छोटा हो, इतना छोटा। भगवान ने क्या कहा है, बालाग्रह शत भागश शतधा कल्पित शत, कि एक बाल के अग्र भाग के 10,000 हिस्से करोगे उतने आप छोटे हो, लेकिन आपने आपको इतने मोटे मान रहे हो, बड़े मान रहे हो। हाँ तो हम भूल जाते हैं मैं असली कौन हूं। हाँ तो जैसे कोई गधा था, वो गधा जब चल रहा था तो देखा लोग प्रणाम कर रहे हैं उसके, उसको देखते ही झुक रहे हैं, उसको लगा देखो सब मुझे प्रणाम कर रहे हैं। लेकिन उस मूर्ख को पता नहीं कि उसके ऊपर टेम्पल छोटा सा था, भगवान के विग्रह एक अल्टर में रखे थे, लोग उसको देख के प्रणाम कर रहे थे, लेकिन उसको क्या लग रहा था, मुझे प्रणाम किया जा रहा है। तो वैसी हमारी स्थिति है। हाँ तो हमें हाँ इस भावना का त्याग करना चाहिए, और क्या होना चाहिए, हाँ चैतन्य महाप्रभु की कृपा तभी हम प्राप्त कर सकते हैं। जनरली इस श्लोक में सूत गोस्वामी बता रहे हैं कि जैसे महाराज परीक्षित ने बोलना बंद किया, इतनी अपनी इच्छा को उजागर किया कि प्लीज मैं आपसे सुनना चाहता हूँ, आप सुनाओ, तो वहां जब ये आमंत्रण मतलब इनवाइट किया, किसको इनवाइट किया, शुकदेव गोस्वामी ये नहीं बता रहे कि देखो मैं कितना भागवत कथा अच्छी करता हूँ, हाँ सीधा जाकर बैठो, कहाँ घूम रहे आप लोग, मैं आपको सुनाता हूँ, हाँ मेरे जैसा वक्ता कोई नहीं, ऐसे किया क्या जिन्होंने, नहीं। वहां शुकदेव गोस्वामी को विनम्रता से अप्रोच कर रहे हैं और इनवाइट कर रहे, प्लीज आप क्या करो, आगे बताओ और आगे डिस्कस करो। तो शुकदेव गोस्वामी ये सुनकर बहुत अधिक आनंदित हो गए, प्रसन्न हो गए। हाँ और फिर आगे देखेंगे कि उनके मुख से कृष्ण कथा की धारा बहती है, और वास्तव में यही है। हाँ सिंसियर श्रोता है और हम सही रूप से अप्रोच करते हैं आध्यात्मिक गुरु को, हाँ तो कृष्ण कथा या उनकी कृपा हमारे ऊपर बहने लगती है। जैसे आप गांव में रहे होंगे तो आपको पता होगा, जो गाय है, गाय का जब बछड़ा दूर थोड़ा सा बंधा होता है और संध्या का समय होता है दूध निकालने का, तो बछड़ा हमेशा ये करता है, दौड़ना चाहता है उसकी ओर, और ये देखकर गाय का हृदय गदगद होने लगता है।
दूध धीरे धीरे क्या होता है वो छोड़ने लगती है, और फिर जब उसको छोड़ते हैं उसको बछड़े को, और वो जाकर दूध पीना शुरू करता है और जोर जोर से अपने मुंह को मारता है, देखा है आपने, हाँ जोर जोर से मारता है, तो जब मारता है तो दूध की दूध फिर और तेजी से क्या होता है गाय छोड़ती है, और फिर वो जो गाय का संभाल करने वाला व्यक्ति बछड़े को साइड में करता है, दूध निकालता है। तो वैसे उस बछड़े की तरह भावना होनी चाहिए, हमें क्या करना होगा उस भावना से, जैसे परीक्षित महाराज वो बछड़े की तरह ही सुखदेव गोस्वामी को अप्रिशिएट कर रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और अभी सुखदेव गोस्वामी अनलिमिटेड कृष्ण कथामृत रूपी जो दुग्ध है भागवतम वो उनको पिला रहे हैं। तो इस प्रकार से ये सिंसियर भावना परीक्षित महाराज के हृदय में थी उनसे सुनने के लिए, और वास्तव में हम गंभीर बनना चाहते हैं तो हमें ये सुनना होगा, हम श्रीमद् भागवतम को गंभीरता से लेना होगा, रोज श्रीमद् भागवतम को पढ़ो, पढ़ने को नहीं मिला तो ऑडियो लेक्चर सुनो, वो नहीं है तो यहाँ आकर भागवतम क्लास सुनो, मतलब एना केना प्रकार एना मना कृष्ण निवेशयत, किसी ना किसी प्रकार से मन को कृष्ण में नियुक्त करना होगा, अन्यथा हम क्या कर रहे हैं श्रम एव ही केवलम न उत्पादित यदि रति श्रम एव ही केवलम, इतना सब कुछ करके बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स करके यदि कृष्ण के प्रति प्रेम नहीं उत्पन्न हो रहा है हृदय में तो सारा क्या है श्रम है, गधे की तरह केवल कार्य है। हाँ तो इस भागवतम से हमें यही शिक्षा लेनी चाहिए और प्रयास करना चाहिए कि इसको हम अपने जीवन में ढालें। तो इस प्रकार से हम जब करते हैं तो निश्चित रूप से हमारे जो भक्ति करने का जो प्रयास है वो फलीभूत होगा और हम एक दिन हम होंगे कामयाब, एक दिन होंगे कामयाब यदि हम क्या होंगे सीरियस सिंसियर और ईगर होंगे देवव्रता से। हरे कृष्णा। टाइम तो हो गया है, एक प्रश्न ठीक है, हाँ चर्चा करनी थी लेकिन मैंने की नहीं, तो ब्रह्मरात और विष्णुरात, ये विष्णुरात परीक्षित महाराज के लिए शब्द आया है क्योंकि माँ के गर्भ में परीक्षित महाराज का संरक्षण किया था कृष्ण ने अश्वत्थामा के ब्रह्माश्व से, और जो ब्रह्मरात है वो किन के लिए है सुखदेव गोस्वामी, इन दोनों को भगवान ने गर्भ में डीलिंग किया था, इन दोनों से एक तो उत्तरा के गर्भ में था तब जाके भगवान गए उत्तरा के गर्भ में और जाके उनको बचाया, और वहां उन्होंने परीक्षित महाराज ने जब गर्भ के अंदर भगवान को देखा, एक्चुअली भागवतम में सोच रहा था भागवतम असली लव स्टोरी है कि नहीं, असली लव स्टोरी है, क्या लव स्टोरी है, एक ही बार किसने देखा कृष्ण को गर्भ के अंदर परीक्षित ने देखा और देखने मात्र से सर्च करना शुरू कर दिया, लव स्टोरी में होता है ना सर्च करता है एक दूसरे को, वैसे ही है परीक्षित महाराज आए और फिर सर्चिंग फॉर कृष्णा, कृष्ण को सर्च कर रहे ढूंढ रहे हैं उनके लिए मैड है, और कृष्ण फाइनली मिले किस रूप में भागवतम के रूप में, और यहां भी मतलब उनको कृष्ण ने परीक्षित की रक्षा की इसलिए उनको विष्णुरात कहा जाता है, और कृष्ण ने सुखदेव गोस्वामी की रक्षा की इसलिए उनको ब्रह्मरात कहा जाता है। कैसे रक्षा की, अभी ये सुखदेव गोस्वामी ज्ञानी व्यक्ति है अपने माँ के गर्भ में 16 साल तक, कितने साल तक, हाँ, और वहां वो बाहर ही नहीं आ रहे हैं, अभी 16 साल का बच्चा अंदर वो बाहर नहीं आ रहा है, कितना कष्ट है, पूरा फैमिली के लिए कष्ट है, तो वहां वो क्यों नहीं आ रहा था, बात अंदर से कर रहा था, किससे बात कर रहा है बाहर, अपने पिता व्यासदेव से, व्यासदेव को कहा बाहर नहीं आऊंगा, बाहर माया का प्रभाव बहुत है और माया से मुझे बचना है, सुनने का बेटा बाहर राजा कहते नहीं, कहते आप डरो मत मैं हूं, कहते तुम माया से परे नहीं हो आप क्या माया आदेश हो, माया के कंट्रोलर हो क्या, नहीं, जो माया का कंट्रोलर है ना वो आकर मुझे बोले तो मैं बाहर आ सकता हूं, तो उस समय कृष्ण द्वारका में थे,
हाँ कृष्ण द्वारका में तो व्यासदेव ने कहा, हाँ उनको बुलाया, कृष्ण को बुलाया, कहा बद्रिकाश्रम में। आप सोचो द्वारका से, कभी कभी कृष्ण ना ब्रह्मवर पुराण में वर्णन आता है, ये ब्रह्मराज शब्द इसलिए है, ब्रह्मवर पुराण में वो लीला है किस प्रकार से उनको बचाया भगवान ने। तो ब्रह्मवर पुराण में वर्णन आता है कृष्ण कभी कभी अकेले द्वारका को छोड़कर अकेले निकल जाते थे बद्रिकाश्रम आदि हिमालय में। तो जब इनका वो समय आया, इन्होंने व्यासदेव ने बुलाया कृष्ण को, और कृष्ण ने कहा हे शुकदेव गोस्वामी बाहर आ जाओ, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, वचन देता हूं कि माया तुम्हें छू भी नहीं सकती, माया के प्रभाव में तुम आ नहीं सकते। तो उनका कृष्ण की बात, ये बात मानी उन्होंने, इतना फेथ। जैसे मैं परसों भी कह रहा था, इतनी गीता बोली भगवान ने, इतने शब्द दिए, इतने श्लोका दिए, फेथ एक में भी नहीं है, लेकिन वहां एक वचन क्या बोला कृष्ण ने, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। और कृष्ण वही चीज गीता के अंत में कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच, डरो मत, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा कृष्ण कहते हैं। वैसे ही उन्होंने उनको भी कहा शुकदेव गोस्वामी को, और शुकदेव गोस्वामी फिर बाहर आए, मतलब उनको रक्षा की उन्होंने कृष्ण ने, इसलिए उनको ब्रह्मराज कहा गया है। और तो इस प्रकार से श्रीमद् भागवतम है, श्रीमद् भागवतम शास्त्र कहते हैं किम वा परेरीश्वरः, श्रीमद् भागवतम से प्रीति हो जाए तो आपको किसी और से प्रीति उत्पन्न करने की आवश्यकता नहीं है। शास्त्र तो इतनी महिमा कहते हैं कि भागवतम एक एक ग्रंथ का आप अध्ययन करते हैं, एक भागवतम को दिन रात संग करते हैं, तो आपको किसी और ग्रंथ को खोलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि श्रीमद् भागवतम क्या है, पूर्ण है, पूर्ण है, पूर्ण पूर्ण श्रीमद् भागवतम है, सब प्रकार का ज्ञान श्रीमद् भागवतम में है, तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की। पतित पावन श्रील प्रभु।